19वीं शताब्दी के कुछ धार्मिक सामाजिक आंदोलन, पृष्ठ संख्या 51। अंग्रेज शासक हमारे यहाँ के सामाजिक धार्मिक जीवन में दखलंदाजी नहीं करते थे, परंतु उनके साथ उनके ईसाई साधु तथा पादरी भी आते रहते थे। इन पादरियों ने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए खंडनात्मक प्रवृत्ति को प्रारंभ किया। वे हिंदू धर्म में जो अनेकानेक विकृतियों से ग्रस्त था, उन्हें हिंदू धर्म के मूल लक्षण मानते हुए उन पर प्रहार करते थे, और उन विकृतियों के कारण जिन दलित जातियों का शोषण हो रहा था, उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। ईसाई धर्म के इस धर्म प्रचार को रोकने के लिए हमारे यहाँ कतिपय सुशिक्षित लोगों ने कुछ धार्मिक सामाजिक आंदोलनों को छेड़ा। इन आंदोलनों के द्वारा भारतीय समाज में जो प्रगति विरोधी और शोषणोन्मुखी प्रवृत्ति थी, उनका विरोध हुआ। ऐसे आंदोलनों में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी आदि प्रमुख है। पहला, ब्रह्म समाज। राजा राममोहन राय भारतीय नवजागरण तथा आधुनिक चेतना के अग्रदूत माने जाते हैं। वे एक बहुश्रुत विद्वान थे और प्राच्य पाश्चात्य विधाओं में उनकी गहरी पैठ थी। बंगाल के जमींदार घराने से संबद्ध होने के कारण भारतीय तथा अंग्रेज दोनों तबकों के बुद्धिजीवी लोगों में उन्हें सम्मान से देखा जाता था। उन्होंने पूर्व और पश्चिम की वैचारिक, सामाजिक, धार्मिक प्रवृत्तियों के बीच एक मध्य मार्ग का निर्माण किया। प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन के आधार पर उन्होंने सती प्रथा तथा बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया। उनके प्रयासों के फलस्वरूप सती प्रथा पर कानूनी प्रतिबंध लग गया। उन्होंने बहुविवाह प्रथा एवं कुलीन विवाह प्रथा दोनों का विरोध किया। उन्होंने नारी अभ्युत्थान तथा उसकी आर्थिक स्वाधीनता के लिए भी आंदोलन किया, जिसमें प्रथम बात में तो कुछ सफलता मिली, परंतु आर्थिक स्वाधीनता स्वतंत्रता के पश्चात ही इष्ट परिणाम में मिली। राजा राममोहन राय की इस प्रवृत्ति को ब्रह्म समाज के तहत केशव चंद्र सेन तथा देवेंद्र नाथ टैगोर ने आगे विकसित किया। राजा राममोहन राय द्वारा सन 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज पूर्णतया औपनिषदक सत्यों पर आधारित था। इस महान क्रांति दूत के संदर्भ में डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा अपन, उनके समस्त कार्यकलाप पर दृष्टिपात करने के बाद ऐसा लगता है कि उनका प्रधान विषय धर्म नहीं, समाज था। धार्मिक सुधारों की बात उन्होंने शायद इसलिए उठाई थी कि एक ओर उन्हें जहां ईसाइयों का सामना करना था, वहां दूसरी ओर उन्हें हिंदू समाज को कुरीतियों और अंधविश्वासों के विरुद्ध सचेत करना था। यह भी ध्यान देने की बात है कि राममोहन ने विश्व मानवता की जो बात कही, वह कही तो यूरोप में भी जाती थी, किंतु यूरोप की विश्व मानवता संकीर्ण थी। उसमें पूर्वी जगत के लिए स्थान नहीं था, दुर्बल जातियों की गणना नहीं थी। यूरोप की दृष्टि में विश्व इतिहास का अर्थ यूरोप और अमेरिका की मानवता से था, किंतु राममोहन राय की विश्व मानवता का वृत्त बहुत अधिक विस्तृत था, जिसमें समस्त भूमंडल की स्वतंत्र, पराधीन, पृष्ठ संख्या 52, समृद्ध, दलित और निष्पेषित जातियों के लिए एक समान स्थान था। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, पृष्ठ संख्या 542। केशव चंद्र सेन तथा महर्षि देवेंद्र नाथ ने राजा राममोहन राय की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया। प्रतिमा पूजन का विरोध, जाति प्रथा का विरोध, सती प्रथा का विरोध, विधवा विवाह तथा अंतरजातीय विवाह का समर्थन प्रवृत्ति आदि ब्रह्म समाज की मुख्य विशेषताएं हैं। दूसरा, प्रार्थना समाज। महाराष्ट्र में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में परमहंस नामक एक संस्था चलती थी, जिसका उद्देश्य सामाजिक सुधारों को गति प्रदान करना था। इतिहासकार फरकुहर के अनुसार इस संस्था का सदस्य वही हो सकता था जो ईसाई या मुसलमान का बनाया भोजन न करे। ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन जब बंबई गए तो उनकी प्रेरणा से परमहंस संस्था ने 1867 में प्रार्थना समाज नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था के मुख्य चार उद्देश्य थे। पहला, जाति प्रथा का विरोध। दूसरा, विधवा विवाह का समर्थन। तीसरा, स्त्री शिक्षा का प्रचार। तथा चौथा, बाल विवाह का विरोध। इस प्रकार प्रार्थना समाज में उक्त चार मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया, क्योंकि इन चार दोषों पर ही विधर्मियों की सीधी दृष्टि पड़ती है और इन दोषों का समर्थन कट्टर लोग भी नहीं कर पाते। अतः प्रार्थना समाज के सुधारवादी नेताओं ने सर्वप्रथम इन चार मुद्दों पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया। महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, आगरकर तथा लोकमान्य तिलक जैसे नेता इस संस्था में आए थे। इनमें रानाडे और आगरकर कुछ मध्यवर्गीय हैं। तिलक में कट्टरता और उग्रता अधिक है। जिस प्रकार बंगाल में हिंदू नवोत्थान के प्रथम नेता राजा राम मोहन राय हुए, उसी प्रकार महाराष्ट्र में इस आंदोलन का श्री गणेश महादेव गोविंद रानाडे ने किया। बौद्धिक ऊंचाई में रानाडे प्रायः राजा राम मोहन राय के समकक्ष ठहरते हैं। उनकी मेधा, उनका ज्ञान और उनका पावन चरित्र उन्हें देश के सर्वोत्तम महापुरुषों में स्थापित करता है। गोपाल कृष्ण गोखले रानाडे के शिष्य थे और उन्होंने लिखा है कि रानाडे ने प्रायः 30 वर्ष तक भारतवर्ष में ऊंचे से ऊंचे विचारों तथा ऊंची से ऊंची आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व किया। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर कर्वे ने लिखा है कि कोई 22 साल तक पुणे का सारा इतिहास रानाडे के कृतियों का ही इतिहास था। पैराग्राफ चेंज। उन्हीं दिनों में पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन नामक एक संस्था स्थापित की थी, जो कि स्त्रियों में नई चेतना जगाने के उद्देश्य से शुरू हुई थी। पंडित रमाबाई ब्राह्मणी थी एवं संस्कृत विधा पर उनका असाधारण अधिकार था। हिंदू समाज में नारियों का जो अत्यंत निम्न स्थान था, उससे वे अत्यंत क्षुब्ध थी। अतः नारी जागरण के संदेश को लेकर उन्होंने पूरे देश का दौरा किया। इस दौरे में बंगाल पहुंचने पर उन्होंने एक अब्राह्मण से विवाह किया। कुछ समय बाद वे विधवा हो गई। उनके इस साहस से महाराष्ट्र की जनता बहुत कुपित हो गई। यहाँ तक कि तिलक, रानाडे और आगरकर ने भी शारदा सदन से संबंध विच्छेद कर लिया। पंडिता रमाबाई इंग्लैंड और अमेरिका गई और वहां से ईसाई बनकर वापस लौटी। तीसरा, आर्य समाज। ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज की भांति आर्य समाज का आंदोलन भी 19वीं शताब्दी के प्रमुख सुधारवादी आंदोलनों में रहा है। आर्य समाज के स्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के काठियावाड़ के एक गांव से थे, परंतु संस्कृत हिंदी पर उनका अभूतपूर्व अधिकार था। पृष्ठ संख्या 53। उनके सत्यार्थ प्रकाश की गणना एक अच्छे गद्य के रूप में होती है। जिस समय हिंदी गद्य अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, दयानंद सरस्वती सन 1872 में कलकत्ता गए थे और महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर तथा केशव चंद्र सेन से उनकी भेंट हुई थी, परंतु ईसाइयत से प्रभावित उक्त दोनों विद्वान स्वामी जी के पुनः जन्म सिद्धांत और वेदों की प्रामाणिकता विषय में सहमत नहीं हो सके। कहते हैं कि कलकत्ता में ही केशव चंद्र सेन ने संस्कृत छोड़कर हिंदी में बोलने की सलाह दी थी, तभी से स्वामी जी के व्याख्यानों की भाषा हिंदी हो गई। उसका एक परिणाम यह भी हुआ कि हिंदी भाषी प्रांतों में उन्हें अगणित अनुयायी प्राप्त हुए। कलकत्ते से स्वामी जी बम्बई गए और वहीं 10 अप्रैल 1875 को उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। बम्बई से दिल्ली होते हुए वे पंजाब पहुंचे, जहां उनके आर्य समाज को बहुत प्रोत्साहन मिला। यहां यह ध्यातव्य है कि सुधारवादी आंदोलनों में एकमात्र आर्य समाज ही ऐसी संस्था है जिसने अपने जन्म से ही विदेशी शासन का विरोध और स्वदेशी शासन का समर्थन किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक स्थान पर लिखा है, इन्वर्टेड कमापन, विदेशी राह चाहे माता पिता के समान क्यों ना हो, लेकिन वह स्वदेशी राज्य की समानता नहीं कर सकता। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ सत्यार्थ प्रकार 8वां समुल्लास, पृष्ठ संख्या 154। स्वराज्य शब्द को आधुनिक अर्थ भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया है। जहाँ ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज भद्र वर्ग और उच्च मध्य वर्ग तक सीमित रहा, वहां आर्य समाज ने हमारे देश की सामान्य जनता के बीच में अपना स्थान बनाया। आर्य समाज ने अशिक्षा, कुरीतियों, मूर्ति पूजा, तीर्थ, बलि, पर्दा, दहेज, बाल विवाह, अनमेल विवाह आदि का खंडन किया तथा विधवा विवाह, नारी शिक्षा और अछूतों को मानवीय अधिकार दिलाने में पहल की। आर्य समाज का पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि प्रदेशों में काफी प्रचार हुआ और इन प्रदेशों के अनेक नगरों में आर्य समाजियों ने अपने संस्थाएं स्थापित की। यह बतलाया जा चुका है कि आर्य समाज में प्रारंभ से ही स्वराज्य विषयक विचारों को प्राधान्य मिला हुआ था। फलतः बाद में जब स्वाधीनता का आंदोलन प्रारंभ हुआ, तब मध्यमार्गी आर्य समाजी कांग्रेस से जुड़ गए। दूसरी तरफ उग्रवादी आर्य समाजी क्रांतिकारी मूवमेंट से संबद्ध हो गए। बिस्मिल चंद्रशेखर, रोशन सिंह, भगवान दास माहौर आदि प्रसिद्ध क्रांतिकारी आर्य समाजी विचारधारा वाले ही थे। देश में राजनीतिक चेतना के विकास में आर्य समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है तथा हिंदी के अनेक उपन्यासकारों पर भी उनका गहरा असर देखा जा सकता है। हिंदी के प्रथम उपन्यास भाग्यवती के लेखक पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी एक आर्य समाजी पंडित ही थे। प्रेमचंद और उनके समकालीन लेखकों पर भी इस आंदोलन का व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है। चौथा, थियोसॉफिकल सोसाइटी। उक्त संस्था त्रयी के अतिरिक्त थियोसॉफिकल सोसाइटी या ब्रह्म विद्या समाज ने भी सामाजिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। थियोसोफी शब्द दो यूनानी शब्दों के योग से बना है। यूनानी में थियोस, THEOS, ईश्वर को कहते हैं और सोफिया का अर्थ ज्ञान है। अतः थियोसोफी का अर्थ ब्रह्म विद्या ऐसा किया जाता है। पृष्ठ संख्या 54। इसकी स्थापना हेलेना पेट्रोवेना ब्लेवॉस्की नामक एक रूसी महिला ने 7 सितंबर 1875 में की थी। प्रारंभ में इस संस्था का उद्देश्य केवल अगोचर नियमों का अनुसंधान मात्र था। बाद में यह संस्था संपूर्ण मानवता के हित में कार्य करने लगी। ब्रह्म समाजी आंदोलन रक्षणात्मक व्यूह को लेकर चला था। आर्य समाज ने आक्रमणात्मक व्यूह को अपनाते हुए वैदिक संस्कृति को सर्वोच्च स्थान दिया था। मादास ब्लोवात्स्की दयानंद से अत्यधिक प्रभावित थी। उनके अनुसार शंकराचार्य के बाद से भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो स्वामी जी से बड़ा दार्शनिक, उनसे अधिक तेजस्वी वक्ता तथा कुरीतियों पर टूट पड़ने में उनसे अधिक निर्भीक रहा हो। संदर्भ ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, पृष्ठ संख्या 557। पैराग्राफ चेंज। जब थियोसोफिस्ट भारत आए, तब प्रारंभ में उन लोगों ने आर्य समाज से मिलकर काम किया, किंतु बाद में उनकी बहुत सी मान्यताएं आर्य समाजी सिद्धांतों के विपरीत पड़ती थी, अतः वे उनसे अलग हुए, परंतु स्वामी जी के प्रति उनकी श्रद्धा वैसी ही बनी रही। थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रवृत्तियों में तीव्रता लाने का श्रेय श्रीमती एनी बेसेंट को जाता है। 16 नवंबर 1893 में भारत आते ही वे उसके सांस्कृतिक आंदोलनों में कूट पड़ी। उनकी मान्यता थी कि पूर्व जन्म में वे हिंदू थी, अतः हिंदू धर्म को विश्व के सभी धर्मों में प्राचीन ही नहीं बल्कि श्रेष्ठ मानती थी। बनारस में उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। श्रीमती एनी बेसेंट महान विदुषी थी। बनारस के पंडितों ने उनको सर्व शुक्ला सरस्वती की उपाधि दी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने उनके विषय में कहा था, ग्रेटेस्ट ऑरेटर इन द इंग्लैंड एंड पॉसिबली इन यूरोप, संदर्भ ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय, पृष्ठ संख्या 564। आगे चलकर एनी बेसेंट तिलक द्वारा चलाए गए होम रूल आंदोलन से जुड़ गई। इन्होंने भारत में स्त्रियों की स्थिति को ऊपर उठाने में तथा उन्हें दिन प्रतिदिन अधिक शिक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। न केवल अपने विचारों से बल्कि स्वयं के उदाहरण के द्वारा उन्होंने यहाँ की स्त्रियों में जागृति के स्वर को फूंकने का काम किया। पैराग्राफ चेंज। उपर्युक्त संस्थाओं ने भारतीय समाज में नवरचना की पृष्ठभूमि को तैयार किया, जिसमें स्त्रियों की बेहतर स्थिति को केंद्र में रखा गया। बाद में महात्मा गांधी जैसी नेताओं ने स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के भरसक प्रयत्न किए। वे स्त्री पुरुष समानता के समर्थक थे। उनके इस प्रयत्नों के फलस्वरूप लाखों स्त्रियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी की। राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा स्त्रियों को आगे लाने की यथेष्ट चेष्टाएं हुई, जिसके कारण कई महिला नेता सामने आईं, जिनमें कस्तूरबा, अरुणा असफाली, विजया लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी आदि प्रमुख हैं। इन महिला नेताओं के कारण नारी चेतना अधिक विकसित हुई तथा स्त्रियों की नैतिक हिम्मत में सनै सनै इजाफा हुआ। गांधी जी ने बाल विवाह तथा कुलीन विवाह का विरोध किया। वे विधवा, पुनर्विवाह तथा अंतरजातीय विवाह का भी समर्थन करते थे। पैराग्राफ चेंज। इन सामाजिक राजनीतिक चेतना के वातावरण में अनेक स्त्री संगठन सामने आए, जिन्होंने स्त्रियों की सामाजिक राजनीतिक स्थिति को और भी अधिक सुदृढ़ करने में योग दिया। ऐसे संगठनों में भारतीय महिला समिति ब्रैकेट में इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन, अखिल भारतीय महिला संघ, भारतीय ईसाई महिला मंडल, कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट पृष्ठ संख्या 55 आदि संस्थाओं ने निरंतर स्त्रियों की निर्योग्यताओं को दूर करके उन्हें उनका उचित स्थान दिलाने में भरसक चेष्टा की। इन संगठनों के कारण ही सन 1932 में दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना हुई। इन संगठनों ने बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह एवं दहेज प्रथा आदि स्त्री विरोधी परंपराओं का विरोध किया। इन्होंने स्त्रियों के लिए मताधिकार की भी मांग की। पैराग्राफ चेंज। उपर्युक्त संस्थाओं एवं संगठनों के परिणाम स्वरूप अनेक संवैधानिक कानून बने, जिन्होंने स्त्रियों की स्थिति को सुधारने में योग दिया। ऐसे कानूनों में सारदा बिल, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, हिंदू नाबालिग और संरक्षता अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम, स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यापार अधिनियम, दहेज निरोधक अधिनियम आदि पारित किए गए। इन कानूनों से स्त्रियों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक संपूर्ण समाज में इनको लेकर जागृति नहीं आएगी, तब तक इन कानूनों का व्यवहारतया कोई अर्थ नहीं। दहेज निरोधक अधिनियम द्वारा दहेज लेना और देना जुर्म माना गया है, तथापि सांप्रतिक उच्च वर्गीय हिंदू समाज में यह प्रथा अपना पैशाचिक स्वरूप धारण कर रही है, जिनकी विभीषिकाओं का लोमहर्षक वर्णन हमें अरविंद जैन द्वारा प्रणीत औरत होने की सजा नामक पुस्तक में मिलता है। उपर्युक्त जागरण के कारण वह मध्ययुगीन कुहासा कुछ कुछ छटा है। हिंदू, पारसी तथा ईसाई स्त्रियों में इनसे कुछ लाभ भी पहुंचा है, किंतु मुस्लिम समाज में अभी उक्त प्रकार की नारी चेतना नहीं आई है। राजीव गांधी के समय में साहबानू केस को लेकर सरकार को पीछे हट करनी पड़ी थी। वस्तुतः मुस्लिम समाज में भी सुधार पढ़े लिखे, सुशिक्षित, सुचिंतित, प्रगतिवादी मुस्लिम नेताओं द्वारा ही संभव हुआ। अन्य धर्म के लोग इस विषय को लेकर जितना ही ज्यादा उहापोह करेंगे, मुस्लिम समाज उतना ही अधिक कट्टर होता जाएगा, क्योंकि वही स्वस्थ क्रिया होने के स्थान पर प्रतिक्रिया होती है और प्रतिक्रिया प्राय स्वस्थ नहीं हो सकती। पैराग्राफ चेंज। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे राष्ट्रीय जीवन में स्त्रियों की स्थिति को लेकर अनेक उतार चढ़ाव आते रहे हैं। पहले स्त्रियों की स्थिति कुछ अच्छी थी, बाद में उनकी स्थिति में बराबर गिरावट आती गई। इधर पिछले 1.5-2 शताब्दियों से स्त्रियों की स्थिति को लेकर उहापोह शुरू हुआ है। पश्चिम में विमेन इमेंसिपेशन तथा विमेन लिबरेशन जैसे कई आंदोलन छिड़ गए। वस्तुतः यहाँ स्त्री पुरुष की गैर बराबरी को दूर करने का लक्ष्य होना चाहिए, न कि स्त्री पुरुष को अलग अलग खेमों में बांटकर उन्हें एक दूसरे का विरोधी करार देने की ओर उन्मुख हो। सद्भाग्य से हमारे यहाँ स्त्री पुरुष गैर बराबरी के सकारात्मक पक्षों को लिया जा रहा है, यह एक शुभ लक्षण है। बदली हुई परिस्थितियों में स्त्रियां जीवन के नाना क्षेत्रों में अपनी शक्ति, बुद्धिमत्ता, साहस आदि का परिचय दे रही हैं। यहाँ कुछ एक ऐसी भारतीय महिलाओं के नामोल्लेख के मोह को संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, जिन्होंने जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में पहल की है। पृष्ठ संख्या 56, चंद्रमुखी बोस और कादम्बनी बोस प्रथम महिला स्रातिकाएं, बीकाजी कामा प्रथम महिला क्रांतिकारी, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, अमृता शेरगिल प्रथम महिला चित्रकार, सरोजनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल, डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी प्रथम महिला विधायक एमएलए, श्रीमती सुचेता कृपलानी प्रथम मुख्यमंत्री, श्रीमती मार्गरेट कजिन्स प्रथम महिला मताधिकार आंदोलन की सूत्राधार, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित प्रथम महिला राजदूत प्रथम राष्ट्र संघ अध्यक्षा, तैयबा बेगम प्रथम मुस्लिम स्नातक महिला, स्वर्ण कुमारी देवी प्रथम महिला उपन्यासकार, अन्ना राजम ज्योजार्ज प्रथम महिला आईएएस, श्रीमती किरण बेदी प्रथम महिला आईपीएस, श्रीमती हंसा मेहता प्रथम महिला उपकुलपति, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रतिभा आर्य प्रथम नेत्रहीन स्रातिका, ए ललिता प्रथम महिला इंजीनियर, शांता रानी प्रथम महिला बैंक मैनेजर, डॉक्टर गीता घोष प्रथम महिला छाताधारी, सुभासिनी दास गुप्ता प्रथम महिला सेनाधिकारी, डॉक्टर विद्या कोठेकर प्रथम नाभिकीय भौतिकी विद, कुमारी आरती शाह प्रथम इंग्लिश चैनल तैराक महिला, श्रीमती ज्योति मेहता प्रथम महिला वन्य प्राणी विद, श्रीमती सविता रानी अंतरिक्ष विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय कानून में प्रथम महिला, कुमारी पीटी उषा एशियाड गेम्स में स्वर्ण पदक पाने वाली प्रथम महिला, कुमारी कल्पना चावला प्रथम महिला अवकाश अवरोही। संक्षेप में, जीवन के नानाविध क्षेत्रों में स्त्रियां दिन प्रतिदिन आगे आ रही हैं। गुजरात के पिछले 4-5 वर्षों के 10वें और 12वें बोर्ड के प्रथम 10 आने वाले छात्रों की सूची पर यदि विहंगम दृष्टिपात किया जाए तो उनमें भी अब प्रायः 50% छात्राएं पाई जाती हैं। क्रमशः जीवन के अनेकानेक वर्ज्य क्षेत्रों में पृष्ठ संख्या 57 महिलाएं साहसपूर्वक आगे आ रही हैं। प्रस्तुत अध्ययन में आधुनिक काल के उपन्यासों में नारी की जो विभिन्न छवियां उभर कर आई हैं उसे देखने परखने का उपक्रम रहा है। परवर्ती अध्यायों में आधुनिक उपन्यासों के संदर्भ में सन 1960 से 1995 तक के उपन्यासों की पड़ताल होगी। निष्कर्ष, प्रस्तुत अध्याय के समग्रावलोकन से हम निम्नलिखित निष्कर्षों तक पहुंच सकते हैं। पहला, उपन्यास इस नए युग के नए मनुष्य की विधा है। पुराना कथा साहित्य जहां स्थूल कथा वस्तु प्रधान एवं मनोरंजन प्रधान था, वहां यह नया कथा साहित्य सूक्ष्म कथा वस्तु प्रधान चरित्र प्रधान वातावरण मूलक एवं जीवन दर्शक सम्मिलित है। दूसरा, यूरोप में भी उपन्यास का उद्भव औद्योगिक क्रांति से उद्बुद्ध पूंजीवादी व्यवस्था के उपरांत हुआ है। इस प्रकार उपन्यास का संबंध पुनर्जागरण की प्रवृत्ति के साथ रहा है। तीसरा, यूरोप में उपन्यास का निर्भ्रांत रूप डैनियल जीफो, रिचर्डसन, फील्डिंग, स्मोलेट और स्टर्न जैसे लेखकों में मिलता है। चौथा, भारतीय भाषाओं में उपन्यास का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ है। यह एक विचित्र एवं सुखद संयोग है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास भाग्यवती 1877 आधुनिक काल की एक ज्वलंत समस्या नारी शिक्षा की समस्या को लेकर लिखा गया है। पांचवा, प्रेमचंद पूर्व काल में नवसुधारवादी लेखक पंडित श्रद्धाराम फुलौरी, बालकृष्ण भट्ट, मन्नन द्विवेदी आदि ने नारी विषयक प्रगतिवादी दृष्टिकोण को अपनाया है, जबकि रूढ़ीवादी सनातनपंथी लेखक लज्जा राम मेहता, किशोरी लाल गोस्वामी, राधा कृष्ण दास आदि ने यथास्थिति का पक्ष लिया है। छठवां, प्रेमचंद के समय तक नवसुधारवादी आंदोलन प्रभावशाली हो चुका था, अतः प्रेमचंद तथा प्रेमचंद स्कूल के उपन्यासों में नारी एक कदम आगे बढ़ी है। वह अब श्रद्धा नहीं, भोग्या भी नहीं, परंतु जीवन के संघर्ष में पुरुष की सहभागिनी है। सातवां, प्रेमचंदोत्तर काल में उपन्यास की अनेकानेक प्रवृत्तियां विकसित होती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति तक के नारी प्रधान उपन्यासों में नारी, चंपाकली, झूलिया, देवदासी, नरमेध, त्यागपत्र, शेखर एक जीवनी भाग एक दो, दिव्या, चढ़ती धूप आदि उपन्यास प्रमुख हैं। आठवां, स्वातंत्र्योत्तर काल के उपन्यासों में सन 1960 तक के नारी प्रधान उपन्यासों में रतिनाथ की चाची, बलचन्मा, मैला आंचल, सुखदा, नदी के द्वीप, दिगंबरी, डूबते मस्तूल, झूठा सच आदि उपन्यास आते हैं। पृष्ठ संख्या 58। यहाँ यह लक्षित किया जाता है कि जैसे जैसे आर्थिक दृष्टि से नारियों की स्थिति सुदृढ़ हुई है, वैसे वैसे उनकी चेतना में भी परिवर्तन आया है। नौवां, भारतीय समाज एवं संस्कृति पर दृष्टिपात करें तो प्रतीत होता है कि वैदिक काल में सामाजिक धार्मिक दृष्टि से स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी, परंतु बाद में उत्तर वैदिक काल, धर्मशास्त्र काल और मध्य काल में स्त्रियों की स्थिति में निरंतर गिरावट आती गई है। दसवां, अंग्रेजों के आगमन के उपरांत हिंदू धर्म पर ईसाई मिशनरियों के जो हल्ले हुए, उसके बचाव में जो धार्मिक सामाजिक आंदोलन उद्बुद्ध हुए, उसके कारण स्त्रियों की स्थिति में पुनः सुधार होने की प्रक्रिया शुरू हुई। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, सावित्री बाई फूले, पंडिता रमाबाई, महात्मा गांधी जैसे महानुभावों के कारण स्त्रियों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। ग्यारहवां, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक आते आते भारतीय स्त्री की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है और जीवन के नाना क्षेत्रों में वे शक्ति और साहस का परिचय दिखा सकी है तथा अनेक नारी वर्जित जो पहले समझे जाते रहे क्षेत्रों में भी नारी पुरुष के साथ की गैर बराबरी को दूर करती हुई पाई जा रही है। समाप्त।